हरे कृष्ण। भगवान की ऐसी केयरिंग नेचर है, इतना ख्याल रखते अपने भक्तों का, छोटी छोटी चीजों पर भी, छोटी छोटी बातों पर भी, छोटी छोटी भावनाओं को भी पूरा करते हो। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसी केयरिंग नेचर वाला कोई दूसरा मिलेगा नहीं, जैसा श्री कृष्ण में देखा जाता है। जयदेव जी की बात चल रही है तो जयदेव जी की झोपड़ी में पानी टपक रहा था कई जगह से, तो जयदेव की पत्नी बोलती है पानी टपकता है जगह जगह, तो इसको ठीक करें। जयदेव जी कहते हैं ठीक है, अभी तो बारिश चल रही है, जिस दिन बारिश रुकती है तो मैं कुछ न कुछ उसको करता हूं। तो एक दिन बारिश नहीं थी, आकाश में बादल नहीं थे और बड़ी तेज धूप थी। जयदेव जी ने एक सीढ़ी लगाई और जो फूस है, फूस को लेकर ऊपर चढ़े और जहां पर वो झोपड़ी का हिस्सा पानी टपक रहा था जहां से, उसको रिपेयर करने लगे। उसको पहले खोला, जो सड़ी हुई फूस है उसको खोला, फिर नई फूस वहां पर लगाई। इस तरह से जयदेव जी फिर नीचे उतरे, फिर कुछ फूस ली, फिर ऊपर गए, जो सड़ी हुई फूस को निकाला, वहां पर उसको अच्छी तरह से दूसरी फूस को लगाया। तो इस तरह जयदेव जी को बार बार नीचे आना होता और फूस लेकर ऊपर जाना होता, और ये तेज धूप भगवान कृष्ण को लगा कि मेरे भक्तों को कष्ट हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, जयदेव जी जब नीचे उतरने लगे तो फूस ऊपर पकड़ाने लगे, तो उन्होंने देखा जयदेव जी के ऊपर से फूस आई, तो उन्होंने अपने मन में आइडिया किया कि शायद मेरी जो पत्नी है उसका वो किचन का काम हो गया होगा और वो मेरे को फूस पकड़ा रही है। उन्होंने इजीली उस फूस को पकड़ा बिना कुछ पूछे और झोपड़ी को छाने लगे, उसको रिपेयर करने लगे। तो इस तरह से जब वो थोड़ा सा आगे आते झोपड़ी में नीचे उतर निकले तो भगवान कृष्ण फूस को पकड़ा देते, और वो फूस इस तरह से पकड़ाते कि उनका चेहरा ढक जाता, पता नहीं लगता नीचे से कौन दे रहा है। और जयदेव जी को लगा कि ये धूप थोड़ी देर में चली जाएगी, बरसात का मौसम है, कब बारिश आ जाए मालूम नहीं, और ये मैंने छत खोल दी है, प्रॉब्लम हो जाएगी, और लगातार बारिशें चल रही है आजकल, तो आज ही इसको छत को छाना, इसको रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो जयदेव जी ऊपर से जो सड़ी हुई फूस है उसको फेंक देते हैं, नई फूस को लगाते हैं और भगवान कृष्ण उनको फूस पकड़ाते रहते हैं। किसी तरह से जयदेव जी ने उस झोपड़ी को पूरा रिपेयर कर लिया। उसके बाद जयदेव जी नीचे आए, अपने कपड़े झाड़े, हाथ पैर धोए, तो पद्मावती की आवाज आई कि आप थोड़ा ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए, रसोई बन चुकी है। जयदेव जी हाथ पैर धोकर फ्रेश कपड़े पहनकर किचन में गए और उन्होंने सबसे पहले पद्मावती को धन्यवाद बोला। तो पद्मावती पे ये धन्यवाद किस बात का, कहते पद्मा अगर तू ये फूस मुझको ना पकड़ाती ना तो फिर बड़ा मुश्किल था आज ये सारा काम होना, अकेले मेरे बस का बड़ा मुश्किल था। बार बार मैं नीचे आता, फूस उठाता, फिर ऊपर ले जाता, फिर नीचे आता, फिर ऊपर ले जाता, तूने जो फटाफट फूस पकड़ा दी उससे जरा काम जल्दी जल्दी हो गया और आधे समय में पूरा हो चुका। पद्मावती कहती मैं तो गई नहीं, मैं तो यहाँ किचन में रसोई बना रही थी, फिर जयदेव जी सोते मुझे फूस कौन पकड़ा रहा था, समझ में नहीं आया। लेकिन जब वो भोग लगाने के लिए अपने मंदिर में गए तो देखा उनके जो ठाकुर राधा माधव जी हैं, माधव जी के सारे कपड़ों में वो धान की जो फूस है उसके छोटे छोटे तिनके लगे हुए, खिलखिलाकर हंस पड़े जयदेव जी, और इधर वो हंस रहे हैं और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। और जयदेव जी कहते ठाकुर ये क्या क्या करते रहते आप हैं, हमको आपकी सेवा करनी चाहिए और आप इस कड़ी धूप पे मुझे फूस पकड़ाते रहे, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने सोचा पद्मा पकड़ा रही है। बस जयदेव जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं और आंखों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। बार बार दंडवत किया, बार बार दंडवत किया, हे प्रभु आप जैसा दयालु, आप जैसा भक्तवत्सल संसार में कोई नहीं हो सकता। इस भावना से उन्होंने प्रणाम किया और ठाकुर जी को अपने आराध्य देव को श्री राधा माधव जी को भोग लगाने लगे। हरे कृष्ण।